ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज का हमारा विषय है उड़ती कला का आधार विदेही स्थिति। विदेही अर्थात देह से न्यारी। रामायण में सीता जी को वैदेही कहा गया है, वो हमारी ही यादगार है। इस वैदेही अवस्था के कई नाम हैं। इसको अपन देह से न्यारा, अशरीरी, ऐसे कई नाम देते हैं। ये एक ऐसी अवस्था है जिसमें कर्म करते हुए भी लगता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा, बहुत जिम्मेवारियां होते हुए भी लगता है कि मेरे पर कोई बोझ नहीं है, और बहुत व्यस्त होते हुए भी ऐसे लगता है जैसे मैं बिल्कुल खाली हूं, बिल्कुल इजी हूं। जैसे हमारी दादी जानकी कहती है कि मुझे कोई काम नहीं है। तो ये विदेही अवस्था का प्रभाव है, कितना भी कर लो न थकान है, न चिंता है, न बोझ है। क्योंकि व्यक्ति को थकाता है चिंतन, और जो विदेही अवस्था है उसमें स्थिति एक रस है, एक ही चिंतन है, एक ही स्थिति है, आत्मस्थिति, और दृष्टि साक्षी है, शिव बाबा का निरंतर साथ है, भूतकाल की यादें नहीं है, भविष्य की चिंता नहीं है। तो ये एक ऐसी आनंददायक स्थिति है जिसमें आत्मा अंदर ही अंदर अतींद्रिय सुख महसूस करती है। बाबा ने कहा है आत्मा निर्लेप नहीं है, लेकिन विदेही अवस्था निर्लेप अवस्था है। जैसे वाटरप्रूफ घड़ी होती है तो उसके ऊपर पानी का प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसे ही विदेही अवस्था माया प्रूफ अवस्था है। माया की नगरी में रहते माया का प्रभाव नहीं आता, आत्मा बेदाग हीरे की तरह से चमकती रहती है, निश्चिंत रहती है, लाइट रहती है, माइट रहती है, डिसीजन पावर बहुत अच्छी हो जाती है, परखना वो भी बहुत अच्छे से हो जाता है। पिछले दिनों बाबा ने एक मुरली चलाई थी जिसमें कहा था कि जहां सर्वशक्तिवान का साथ है और सर्वशक्तियां साथ है, वहां समस्याएं समाधान में बदल जाती हैं। तो इस विदेही अवस्था में सर्वशक्तिवान भी साथ है ये महसूस होता है, और सर्वशक्तियां भी साथ है, एक साथ सहनशीलता, नम्रता, सत्यता, पवित्रता, सामना करने की शक्ति, सिकोड़ने की शक्ति, सब शक्तियां एक साथ महसूस होती हैं। और यही वास्तव में कर्मातीत स्थिति के नजदीक ले जाने वाली सीढ़ी है। बाबा मुरली में बहुत काल के अभ्यास की बात करते हैं। तो अगर हम बहुत काल तक इस विदेही अवस्था में रहते हैं तो हमारी ये नेचुरल नेचर बन जाती है कि हम कर्म करते हुए कर्म के प्रभाव से न्यारे रह पाते हैं। कर्म का लेप छेप नहीं लगता, कर्म से प्रभावित नहीं होते, किया और भूल गए, काल के चक्र में लिपट गया और हम पुण्य का खाता जमा करने में आगे लग गए। इसके विपरीत अगर विदेह अवस्था नहीं है, बीती बातें याद रहती हैं, बीती बातों का प्रभाव रहता है, लोगों का प्रभाव रहता है, तो उसके बड़े भारी नुकसान निकलते। जैसे मान लीजिए हमसे कोई ऐसा व्यक्ति मिलने आया जिसकी नेचर बड़ी अग्रेसिव है, आक्रामक है, हम पे अपना प्रभाव डालना चाहता है, गलत बात मनवाना चाहता है, और जब हमने उससे बातचीत की तो वो थोड़ा इरिटेट भी हुआ। अब उससे बातचीत की तो थोड़ा प्रभाव हमारे पे भी आ गया, हमारी मानसिकता थोड़ी सी सीट से हट गई। वो व्यक्ति तो चला गया और उसके बाद एक ऐसा व्यक्ति आया जो बहुत ही नम्र है, सोबर है, हमारे लिए कोई बहुत अच्छी सूचना लेके आया, हमारा थैंक्स करने आया है, लेकिन हमारे मन पर तो पिछले व्यक्ति का प्रभाव है, तो हम क्या करेंगे? अगर उसी प्रभाव को लेकर के इस नए व्यक्ति से बात करेंगे ना, तो पिछले वाले का प्रभाव मन पर होने के कारण हमारा मन भी थोड़ा सा नेगेटिव होगा, थोड़ा इरिटेशन में होगा, थोड़ा अनिजी होगा, और हम इस व्यक्ति के साथ भी पूरा न्याय नहीं कर पाएंगे। इस बात को हम एक उदाहरण से समझेंगे। हमें एक सेब काटना है और हम रसोई में जाते हैं, स्लैब पे चाकू पड़ा है, चाकू से हमने सेब काटा और जब खाने लगे तो मुंह ऐसे बनाया जैसे मिर्च खा रही हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि चाकू मिर्च काट करके स्लैब पे रखा गया और उसको धोया नहीं गया, तो जो पिछला प्रभाव है वो अगली चीज पे आ गया। मिर्च का प्रभाव सेब पर आ गया, होना ये चाहिए था कि मिर्च काटने के बाद चाकू को धोया जाता। तो इसी तरह से मान लीजिए हम किसी मिर्च जैसे आदमी से मिले तो हमारे मन के ऊपर थोड़ा तो मिर्च का असर आएगा ना, और जब उस व्यक्ति से मुलाकात पूरी हो गई फिर हमें क्या करना चाहिए? अपने मन को भी क्या करना चाहिए? धो लेना चाहिए, अर्थात पुनः स्वरूपस्थ हो जाना चाहिए, पुनः विदेही अवस्था में चले जाना चाहिए। और जब हम पुनः विदेह अवस्था में चले गए, स्वरूपस्थ हो गई, और स्वरूपस्थ होकर के फिर कर्म में आए, तो पिछला प्रभाव खत्म। और अब जो व्यक्ति आया है उस व्यक्ति के साथ हम उस व्यक्ति को परख कर उस व्यक्ति के भीतर के भावों को जानकर फिर हम उससे बात करेंगे और उसके साथ पूरा न्याय करेंगे। तो हर कर्म कर लेने के बाद, कर्म के बीच बीच में भी और कर्म कर लेने के बाद भी ये बहुत आवश्यक है कि हम कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ मिनट्स के लिए अपने स्वरूप में टिक जाएं, अपने मूल गुणों को एक बार स्मरण कर लें, अपनी शक्तियों को एक बार दोहरा लें। स्वरूप में टिकते ही इनकी अनुभूति अपने आप हो जाती है और पिछला प्रभाव खत्म हो जाता है। कौन व्यक्ति क्या बोल के गया था वो विस्मृत हो जाता है, फिसल जाता है मेमोरी से, और हम अपने मूल रूप में, ना कि प्रभाव वाले रूप में, अपने मूल रूप में आकर के अपनी ओरिजिनल नेचर के साथ सामने वाले व्यक्ति से बात करते हैं। तो अगर हमें व्यवहार कुशल बनना है, अगर हमें व्यवहारिक प्रज्ञा प्राप्त करनी है, तो बहुत आवश्यक है कि हम किसी के प्रभाव में ना आए, हम अपने ओरिजिनल रूप में रह करके हर एक से बात करें, न्याय करें हर एक के साथ। ये तभी हो पाएगा जब बहुत काल का अभ्यास होगा, अभी अभी देह से कर्म किया और अभी अभी डिटैच होकर के अपनी सीट पे बैठ गए। ये हमें विघ्नों से मुक्त रखेगा, कहीं उलझने नहीं देगा, किसी भाव स्वभाव के टक्कर में नहीं आएंगे, किसी का अवगुण भी नहीं दिखाई देगा, किसी ने कोई बात कह दी उसको लेट गो कर देंगे, चित्त को स्वच्छ रखेंगे। और इस अवस्था में निरंतर महसूसता आएगी कि बाबा की किरणें मुझ आत्मा की छत्र छाया हैं, या बाबा मेरा हाथ पकड़े चल रहा है, या बाबा मेरी बैकबोन है, या बाबा मेरे हर कार्य में हजार कदम बढ़ाकर मेरी मदद कर रहा है। याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भूलेंगे ही नहीं, ये इतनी सुंदर अनुभूति है। अंदर एक अनहद गीत बजता रहेगा, बाबा बाबा, और बुद्धि रूपी नेत्र एक दृश्य देखता रहेगा, मैं बाबा के साथ हूँ, कंबाइंड हूँ, बाबा मेरा है। विजुअलाइज करता रहेगा बाबा के प्यार को, साथ को। इसलिए हम बाबा की कितनी ही मुरलियों की चर्चा करें, एक 18 जनवरी की मुरली में बाबा ने कहा, बच्चे विदेही बनो तो सब दुख दूर हो जाएंगे। सारे दुखों का कारण है आत्मा, फिर प्रकृति के अधीन हो जाती है, देह के अधीन हो जाती है, और सारे सुखों का आधार है फिर स्वराज्य अधिकारी की सीट पर विराजमान हो, इंद्रियों को नियंत्रण में रखे। देखने में आता है कि जैसे हम भोजन करते हैं, तो मान लीजिए कोई नमकीन चीज खा रही है चम्मच से, और उसके बाद कोई मीठी चीज खानी हो तो अपन क्या करते हैं, अरे भाई चम्मच देना दूसरा। नमकीन चीज वाली से हम मीठी चीज नहीं खाते, क्योंकि नमकीन का असर मीठी वाली चीज पे लग जाएगा और हमें मीठे का पूरा टेस्ट नहीं आएगा। चम्मच बदली करते हैं ना, पहले वाली चीज दूसरी थी, आगे वाली दूसरी। यहां मन तो दो है नहीं कि भाई हम मन बदली कर लें, इस मन से मैं एक व्यक्ति से मिला और अब दूसरे मन से मैं दूसरे व्यक्ति से मिल लूं। मन कितने हैं, मन तो एक ही है, इसलिए मन को बदली नहीं करना, लेकिन मन की स्थिति को तुरंत बदलना है, तुरंत सुधारना है, जिससे हम एक कर्म को दूसरे कर्म से सेपरेट कर सके। और वैसे भी बाबा हम बच्चों को सिखाते हैं कि बच्चे जो अंतिम पेपर है, एक सेकंड में देह से न्यारा होने का है। संकल्प किया मैं विदेह हूं और हो गई, ये है हमारा अंतिम पेपर। बहुत मेहनत की, रसाकसी की, फिर देह याद आ गया, फिर देह याद आ गया, तो फेल हो जाएंगे, क्योंकि पेपर के लिए समय तो एक सेकंड ही मिलेगा ना। जैसे आजकल ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होते हैं, हाँ या ना टिक करते जाओ, हाँ या ना, सबसे ज्यादा नंबर उसी में आते हैं, तो ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है। विदेही भाव और हम विदेही हो गए, पूरे नंबर मिल गए, लेकिन इसके लिए बाबा ने कहा शरीर रूपी ड्रेस बहुत लूज होनी चाहिए। जो चीज लूज होती है ना, उसमें से आदमी सेकंड में निकल जाता है, और अगर टाइट हो तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आप देखिए सर्दी में हम स्वेटर पहनते हैं, कई बार नया नया स्वेटर होता है, पहन तो लेते हैं, लेकिन निकालने में कईयों को कहना पड़ता है जरा पीछे से खींचना। अभी नया नया है ना, टाइट बहुत, स्वेटर हो, कोट हो, जुराब हो, मदद लेनी पड़ती है। तो ऐसे ही अगर ये ड्रेस लूज नहीं होगी ना, कमेंट्री का सहारा लो, चिंतन करो, कुछ अच्छा पढ़ो, तब जाकर के मैं शरीरी बनूंगा। कोई अच्छी सी कमेंट्री हो, दूसरे के सहयोग की जरूरत है, क्योंकि ड्रेस टाइट है। और अगर ड्रेस लूज हो तो किसी के सहयोग की जरूरत नहीं है, अपने आप एक सेकंड में उतर जाएगी। और लूज कैसे होती है चीज, उसको रखे रखो अलमारी में लूज हो जाएगी क्या? लूज होने का आधार भी यही है कि पहनो और उतारो, पहनो और उतारो, पहनो और उतारो। तो बाबा कहते हैं इस ड्रेस को लूज करने का आधार भी यही है, अभी अभी देह में, अभी अभी न्यारा, अभी अभी कर्म योगी फरिश्ता और अभी अभी विदेही, दोनों हमारे लिए इजी हो। इतना अच्छा अभ्यास पड़ जाए, जैसे मम्मा के जीवन की कर्म योगी फरिश्ता की एक घटना सुनाती हैं कि एक बार वो अनाज साफ कर रही थी, तो किसी बच्चे ने देख लिया और उसने सारे बच्चों को इकट्ठा कर लिया, चलो चलो मम्मा अनाज साफ कर रही है, अपन करेंगे, अपन करेंगे। तो सारे बच्चे इकट्ठे हो गए, तो एक बच्चे ने कहा मम्मा आप छोड़ दीजिए, हम करेंगे। तो मम्मा ने कहा मैं क्या कर रही हूं, मैं तो कुछ भी नहीं कर रही हूं। तो बच्चों ने कहा मम्मा ये इतना अनाज आपने साफ कर दिया, कितनी देर से आप लगी हुई हैं, हमें पता ही नहीं पड़ा, हम पहले आ जाते, मम्मा प्लीज छोड़ दीजिए। तो मम्मा ने इतनी सुंदर बात कही, हम सबके सीखने जैसी, अनुभव करने जैसी। मम्मा ने कहा मैं थोड़े अनाज साफ कर रही हूं, अनाज साफ तो मेरे नौकर कर रही हैं, मैं तो बाबा के पास बैठी हूं। तो बाबा के पास कौन बैठा है? मालिक, आत्मा यानी के मैं, और नीचे काम कौन कर रहा है? नौकर। तो अगर कर्म करती हमारी ये स्थिति है, हाथ रूपी नौकरों को काम में लगा दिया और मैं डिटैच हूं, तो जैसे ही कर्म पूरा होगा हमको डिटैच होना इजी होगा। तो बाबा कहती हैं, कर्म करते हुए बार बार ये चेकिंग करनी पड़ेगी कि मैं विदेह अवस्था में हूं, मुझे आत्मा की स्मृति है, मुझे इंद्रियों से डिटैच होने की स्मृति है। कर्म में जो इन्वॉल्व हो जाएगा वो कर्म के बाद विदेही नहीं बन पाएगा। इसलिए हम ये अभ्यास डालें कि हमको कर्म डिटैच होकर के करना है। ये बहुत सुंदर अभ्यास है, इसको बार बार अंदर ही अंदर रिपीट करना है, बार बार अपने पर ध्यान देना है। फिर आप देखिए, जो साधु संत सन्यासी हैं, वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमें जन्म और मरण के चक्र से छुड़ा दीजिए। अर्थात जन्म लेना भी दुख है और मृत्यु भी दुख है, ऐसा वो लोग मानते हैं, और हमें इन दोनों से छुड़ा दीजिए। जन्म बंधन है, शरीर में आना बंधन है, शरीर एक कैद है, ऐसा वो मानते हैं। तो एक प्रकार से संसार के जितने भी लोग, 700 करोड़ हैं या 800 करोड़ हैं, जितने भी हैं, सभी कैद में हैं। किस कैद में हैं? शरीर रूपी कैद में। अगर जन्म लेना बंधन है, शरीर कैद है, तो संसार के सब लोग कैदी हैं। और ये कैद कितने साल की है? ये उम्र कैद है। जितनी आपकी उम्र है उतनी आपकी कैद है। 60 साल हो तो 60 साल शरीर में रहोगे, 70 साल है तो 70 साल शरीर में रहोगे। अर्थात जितनी जिंदगी उतनी लंबी कैद, उम्र कैद। लेकिन उम्र कैदियों के इस संसार में बाबा ने हमको मुक्त होना सिखा दिया। कमाल की बात नहीं है? शरीर हमारे पास भी है, शरीर दुनिया के लोगों के पास भी है, लेकिन वो शरीर के बंधन में बंधायमान है, और हम शरीर होते हुए भी छूटे हुए कि नहीं, बंधन से छूटे हुए कि नहीं? छूटे हुए, जब मर्जी इसमें आए और जब मर्जी इससे न्यारे हो जाए। जैसे दुनिया की जो कैद होती है ना, उसमें भी दो प्रकार के लोग होते हैं, एक कैदी होते हैं और दूसरी उनकी केयर करने वाले होते हैं। तो इस संसार रूपी कैद में भी दो प्रकार के लोग हैं, एक तो कैदी हैं और दूसरे हम हैं। हमको बाबा ने क्या काम दिया? हमको बाबा ने काम दिया, आप इन कैदियों के केयर टेकर, आप इनके मुक्तिदाता, आप इन पर रहम करने वाले। ये बंधे हुए हैं, आप छूटे हुए हो, तो जो छूटा हुआ होता है वो बंधे हुए की मदद करता है, रहम करता है। वो अपने सुख को देख देख सोचता है कि ये भी ऐसे ही सुखी हो जाए। तो हम इस संसार रूपी जेल में एक उद्देश्य से बैठे हैं, और वहां लौकिक जेल में जो कैदी होता है उसको तो कुछ नहीं मिलता। वो तो बेचारा कैद में अपना हुनर खो देता है, अपनी कला खो देता है, अपनी पढ़ाई भूल जाता है, गाने का, बजाने का, कमाने का, कोई भी उसमें कला कौशल था, कैद के कारण उसको भूल जाता है। कोई कमाई नहीं कर सकता, कोई व्यापार नहीं कर सकता, जमा खाता बढ़ा नहीं सकता, लेकिन जो केयर टेकर हैं उनकी तो कमाई होती रहती है, उनको तो तनख्वाह मिलती है। तो ऐसे ही संसार के लोग जो बंधन में हैं, शरीर के बंधन में, उनका कोई पुण्य का खाता जमा थोड़ी हो रहा है, उनकी कोई भविष्य की कमाई थोड़ी जमा हो रही है, लेकिन हम बाबा के बच्चे हर पल कमाई कर रहे हैं। और इसलिए बाबा कहते हैं ये संगम युग का जीवन बहुत लंबा होना चाहिए ताकि आपकी कमाई होती रहे। दुनिया के लोग तो कहते हैं प्रभु उठा ले, और हम कहते हैं नहीं, हम लंबे जिए, 100 साल जिए, क्योंकि हमारी हर पल कमाई है। हम जब चाहें, कैदी जब चाहे जेल से निकल नहीं सकता, अगर वो घूमने भी जाते हैं, मंसूरी गए, शिमला गए, तो जैसे आप तोते को पिंजरे में घुमा लाओ, बंद बंद को, और वापस तोता आ गया, घूमते भी बंधन में था, वापस आया तो भी बंधन। कहीं भी घूमाए, 2 दिन घूमते हैं, है तो पिंजरे में बंद। इसलिए घूमने के बाद भी मजा नहीं आता, बहुत अच्छा खाने के बाद भी मजा नहीं आता, बहुत गर्म नरम बिस्तर पे सोने के बाद भी जीवन में आनंद नहीं है, क्योंकि आत्मा रूपी तोता पिंजरे में बंद होके इन सब चीजों का उपभोग करता है, सच्चा आनंद नहीं मिलता। और हम बाबा के बच्चे सादगी में भी अतिंद्रिय आनंद महसूस करते हैं, क्योंकि हम जीवन मुक्त हैं, क्योंकि हम विदेह हैं, क्योंकि हम प्रकृति से न्यारे हैं। तो बाबा ने हमें ये जो कला दी है, इतनी भारी कला, इस कला का हमें सदुपयोग करना है और इस कला का आनंद लेना है और इस कला को बार बार यूज करना है। बाबा कहते हैं बच्चे देह सहित देह के सब संबंधों को भूल एक मेरी शरण में आओ तो मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तो ये जो विदेह अवस्था है इसमें पाप होते नहीं है, और इसमें बाबा से हमारा लिंक इतना जुड़ता है कि पुराने पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ 2 प्रकार की बैटरी है, एक तो मोबाइल में बैटरी होती है, मोबाइल की जो बैटरी होती है उसको अगर आप चार्ज करें तो कैसे चार्ज होती है, मोबाइल के अंदर ही रहती है वो। लेकिन जो कैमरे की बैटरी होती है वो अंदर नहीं, बाहर निकाल करके चार्जर में डाली जाती है। भगत भगवान को याद करते हैं तो कैसे याद करते हैं, बैटरी अंदर ही है, और हाथ जोड़ करके कहते हैं प्रभु शक्ति दो, भक्ति दो, मुक्ति दो, अब बैटरी अंदर ही है, चार्जर तक पहुंच ही नहीं रही है। और जो बाबा के बच्चे हैं वो हैं ज्ञानी तो आत्मा, बैटरी को कैमरे से बाहर निकालते हैं और फिर चार्जर में उसको फिट करते हैं। अर्थात विदेह अवस्था में आत्मा देह से न्यारी होके, देह से बिल्कुल डिटैच होके, देह को बिल्कुल भूल करके, और फिर चार्जर रूपी परमात्मा के पास पहुंचते हैं। तो बहुत तीव्र गति से उसकी चार्जिंग होती है, विज्ञान का एक नियम है, वायु अधिक दबाव से कम दबाव की ओर बहती है और जो ग्रॉस मटेरियल है उसमें भी जो पार्टिकल्स हैं वो अधिक घनत्व से कम घनत्व की ओर बहते हैं। इसी तरह से ऊर्जा का भी यही नियम है। अब शिव बाबा तो ऊर्जा के स्रोत सागर, असीम ऊर्जा है उनमें, सर्व शक्तियां हैं। और जब ये खाली बैटरी उस चार्जर में फिट होती है तो ऊर्जा अधिक दबाव से कम दबाव की ओर बहती है, अर्थात उस भरपूर स्रोत से आत्मा रूपी बैटरी में तीव्र गति से आनी चालू हो जाती है। लेकिन इसके लिए भी बहुत काल का देह से डिटैच रहने का अभ्यास चाहिए, तभी तो हम वहां टिक पाएंगे। और तब तो बाबा से वो शक्ति खींच पाएंगे। अगर हम ऊपर गए और फिर देह की स्मृति आ गई, नीचे आ गई, अभी तो चार्जिंग शुरू हुई थी और हमने बैटरी निकाल ली, 1% भी चार्जिंग मुश्किल से हुई थी। क्यों निकाल ली? निकाल ली अर्थात नीचे की ओर आत्मा को खींच हो गई। खींच कब होती है? जब हमारा किसी के साथ लगाव है, झुकाव है, कोई आकर्षण है तो नीचे की ओर खिंचाव होता है। लेकिन बहुत काल के अभ्यास से लगाव, झुकाव, आकर्षण, खिंचाव से आत्मा मुक्त हो गई है तो वो चार्जर में फिट रहती है। लंबे काल तक ईश्वरीय सानिध्य में रहती है और ईश्वरीय शक्तियों को अपने में भरती है। और जितनी जितनी ईश्वरीय शक्तियां हमारे में भरती हैं, उतनी उतनी उसमें जो पुराने संस्कार हैं, पुरानी स्मृतियां हैं, अनेक जन्मों के जो विकर्म हैं, वो अपने आप ही जगह खाली कर देते हैं, छोड़ देते हैं। जिसके लिए बाबा कहते हैं सोने को आग में डालो तो अलाई निकल जाती है। और जब उस सर्वशक्तिवान परम पवित्र का सानिध्य आत्मा को मिलता है तो उसके अंदर भी जो अलॉय भरी हुई है, अनेक जन्मों के जो दाग धब्बे हैं, वो अपने आप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए भी विदेह अवस्था का बार बार अभ्यास जरूरी है। फिर कई बार हम देखते हैं कि कार्य व्यवहार करते हुए हमें अपने में किसी शक्ति की कमी महसूस होती है, या तो हम भयभीत हो जाते हैं, या तो लगता है माया का सामना करने में हम कमजोर पड़ जाते हैं, या तो किसी का प्रभाव हमारे पर आ जाता है, या तो बाबा की बताई किसी धारणा में कोई कमी रह जाती है। उस समय लगता है कि मेरे में और ताकत होनी चाहिए थी, और शक्ति की जरूरत है मुझे। कार्य व्यवहार में ऐसा महसूस होता है तो बाबा कहते हैं उस शक्ति को भरने का तरीका भी क्या है, कैसे भरेंगे वो ताकत आत्मा में जिसकी हम कमी महसूस कर रहे हैं। मैं डरपोक हूं, भयभीत हो जाता हूं, छोटी छोटी बात में डर लगने लगता है, संशय आ जाता है, शंका आ जाती है, छोटी सी बात में मन भारी हो जाता है। ये हमारी कमियां हैं, कमजोरियां। इसके कारण आत्मा सच्चा सुख महसूस नहीं कर पाती है। तो इस कमी को कैसे खत्म करें? तो इसके लिए भी बहुत काल का विदेह अवस्था का अभ्यास चाहिए। जब हम अपने मूल स्वरूप में परम धाम में जाके टिकते हैं बाबा के सम्मुख, अति प्रिय बिलव्ड फादर के सम्मुख जब हम पहुंच जाते हैं, महसूस करते हैं कि बाबा हमारे सम्मुख है, 5000 साल से बिछड़ा हुआ हमारा अति प्रिय पिता हमारे सम्मुख है, और बाबा ने कहा हुआ है कि संगम युग में बाबा हर बच्चे के हर संकल्प को पूरा करने के लिए बंधा हुआ है। तो बाबा को सम्मुख पा करके मैं आत्मा एक संकल्प करूं कि बाबा से मुझे निर्भयता की शक्ति चाहिए। जैसे साइंस में बटन होता है, आप मशीन के सामने जाके मांगते नहीं हो, मशीन मुझे गर्म पानी दे दे, गर्म पानी दे दे, नहीं, मशीन में एक बटन है लाल रंग का, आप उसे दबा दीजिए, गर्म पानी अपने आप आ जाएगा। तो साइंस चलती है बटन से, साइंस की जो चीजें चलती हैं वो बटन से चलती हैं। कमरे में आपको रोशनी चाहिए, स्विच दबाइए, मांगने की जरूरत नहीं है, बल्ब मुझे रोशनी दे रोशनी दे, बटन दबाइए। गाड़ी का भी आप चाबी घुमाइए, कंप्यूटर का भी आप बटन दबाइए। तो जैसे साइंस की बनी चीजों में बटन काम करता है, ऐसे साइलेंस के लिए संकल्प रूपी बटन की जरूरत होती है। साइलेंस में बटन काम करता है। बटन कैसे काम करता है, संकल्प रूपी बटन कैसे काम करता है? हम बाबा के सम्मुख गए और बटन बार बार नहीं दबाना होता, आपने एक बार स्विच दबाया लाइट आ गई, एक बार बटन दबाया गर्म पानी आना चालू हो गया, आपने संकल्प का बटन दबाया, सर्वशक्तिवान शिव पिता से मुझ आत्मा में निर्भयता की शक्ति आ रही है, संकल्प का बटन दबा दिया और अब उस आती हुई शक्ति को विजुअलाइज कीजिए। जैसे मशीन में बटन दबाया और गिरते हुए पानी को हम विजुअलाइज करते हैं, नीचे गिलास रख लेते हैं, कटोरी रख लेते हैं, तो विजुअलाइज कीजिए। संकल्प करते ही निर्भयता के सागर जो स्वयं निर्भय निर्वैर है, उनसे निर्भयता की किरणें मुझ आत्मा पे उतरने लगी है। ये विजुअलाइज कीजिए, निर्भयता की रेजिज आ रही हैं, निर्भयता की किरणें आ रही हैं, मुझ आत्मा में समाती जा रही हैं, मुझ आत्मा में भरती जा रही हैं। जैसे मैं निर्भयता की किरणों के फव्वारे के नीचे हूँ और मुझ आत्मा में असीम निर्भयता की शक्ति भरती जा रही है, मेरा भय मेरा संशय मेरी कमजोरियां जलती जा रही हैं। ये किरणें एक साथ दो काम कर रही हैं, पॉजिटिव शक्ति को भर रही हैं और नेगेटिविटी को जला रही हैं, डिलीट कर रही हैं। वो मुझ आत्मा के सारी फोल्डर, भय के फोल्डर मेरे अंदर जो निर्मित, चिंता के भय के तनाव के शंका के संशय के, जैसे इन किरणों से वो सारी फोल्डर नष्ट हो रही हैं और निर्भयता मुझ में एक फ्लो की तरह से भरती जा रही है भरती जा रही है। मैं निर्भय बन गई हूँ, मेरा भय खत्म हो गया है, मुझ में निर्भयता की शक्ति का इतना संचार हो गया है मानो मैं बाप समान निर्भय आत्मा हूँ। जैसे मेरा बाप निर्भय निर्वैर है, मैं आत्मा भी निर्भय निर्वैर हूँ। इस चीज को विजुअलाइज करना है, संकल्प नहीं करने, उस होते हुए को महसूस करना है। और निर्भयता की शक्ति लेके आप नीचे आ गए कर्म क्षेत्र पर। अब आप एक्सपेरिमेंट करो कि जिन चीजों से आपको भय लगता था उस चीज के नजदीक जाओ। अंधेरे से भय लगता था, किसी व्यक्ति से भय लगता था, किसी कार्य को करने से भय लगता था, तो जैसे ही आप उस परिस्थिति के नजदीक जाएंगे, आपने जो इतनी देर ऊपर एक दृश्य विजुअलाइज किया था, क्या विजुअलाइज किया था? बाबा से निर्भयता की शक्ति मुझ में भर रही है, वो दृश्य पुनः इमर्ज होगा और आपका विश्वास दृढ़ होगा कि वो शक्ति तो अब भी मुझ में आ रही है और वो शक्ति तो मेरी अपनी शक्ति है, वो तो मुझे उत्तराधिकार में मिली है, वो तो मेरा इनहेरिटेंस है, जो कुछ बाबा का है वो सब कुछ मेरा भी है, तो भय कहां से आया? अगर मेरा बाबा भयभीत नहीं तो मैं कहां से भयभीत हो गया? तो इतनी देर जो आपने परम धाम में वो दृश्य विजुअलाइज किया, वो मेरा संस्कार बन गया, संस्कार के रूप में वो पिक्चर मेरे भीतर बैठ गई और वो संस्कार बार बार इमर्ज होकर के मुझे निर्भयता का बल देगा और इस प्रकार से मेरा भय ऐसे खत्म हो जाएगा जैसे कभी था ही नहीं। कोई कहेगा अरे आप तो बड़े डरपोक थे, आप कहोगे नहीं नहीं मैं तो कभी था ही नहीं, क्योंकि वो संस्कार ही खत्म हो गया ना, अब तो नया संस्कार निर्मित हो गया निर्भयता का। और इस प्रकार से हम ये एक्सपेरिमेंट अपनी हर कमी कमजोरी के लिए कर सकते हैं। रोजमर्रा की दिनचर्या में, कार्य व्यवहार में, मान लीजिए हम संकोची हैं, ठीक बात भी बोल नहीं पाते, मान लीजिए हमें दृढ़ता नहीं है, संकल्प तो करते हैं लेकिन दृढ़ नहीं रह पाते हैं, फिर लूज हो जाता है संकल्प। मान लीजिए हमको काम की बातें याद नहीं रहती हैं और फालतू बातें मन में आती रहती, इन चीजों के लिए भी हम अलग अलग तरीके से अभ्यास कर सकते हैं। जैसे दृढ़ता की शक्ति है तो उसके लिए भी यही अभ्यास है। प्यारे बाबा के सामने हम गए और बाबा ने कहा और हमने संकल्प किया कि बाबा से दृढ़ता की शक्ति का प्रवाह मुझ आत्मा में समा रहा है, मैं अपने संकल्प में दृढ़ हूं। जैसे बाबा विश्व परिवर्तन के कार्य में दृढ़ है, ऐसे मैं आत्मा भी स्व परिवर्तन में दृढ़ हूं। जैसे बाबा का संकल्प हमेशा फौलादी है, ऐसे मुझ आत्मा के संकल्प में भी फौलादी बल है, मैं अपने संकल्प को पूरा करने के लिए दृढ़ हूं, दृढ़ता की शक्ति का प्रवाह मुझ में आ रहा है, कोई भी मुझे अपने संकल्प से हिला नहीं सकता, ना माया ना परिस्थिति ना कोई व्यक्ति, मुझे जो करना है वो करने का बल बाबा से मुझे मिल रहा है। और उसके बाद आप देखिए, आप जो करना चाहते हैं वो संकल्प कैसे दृढ़ हो जाएगा, लूज हो ही नहीं सकता, क्योंकि जितना जितना हम बाबा के नजदीक बैठते हैं हमारे नए संस्कार निर्मित होते हैं, सद्गुणों के संस्कार, शक्तियों के संस्कार निर्मित होते हैं। और पहले के जो संस्कार थे वो कमजोरियों के और दुर्गुणों के संस्कार थे, तो वो कमजोरियां और दुर्गुण हमें हर बात में फेल कर देते थे, और अब बाबा के संग से जो निर्मित हो रही हैं वो शक्ति के, दृढ़ता के संस्कार निर्मित हो रही, वो हमें हर बात में सफलता दिलाते हैं। इसलिए अगर हमें बाबा से मन चाही शक्तियां लेनी है तो उसका आधार भी हमारी विदेही अवस्था है। अभी जो बाबा ने मुरली चलाई थी उसमें बाबा ने कहा था कि कई बच्चे कहते हैं बाबा अब चिंता नहीं करो, समय आएगा तो सब कुछ हो जाएगा। तब बाबा ने कहा था सर्वशक्तिवान के बच्चे अगर समय का इंतजार करें तो पावरफुल कौन हो गया, समय पावरफुल हो गया, समय नंबर वन हो गया और बच्चे नंबर टू हो गए। लेकिन नंबर वन किसको होना चाहिए, बच्चों को। तो बाबा ने कहा समय का इंतजार नहीं करना, समय को लाना है। समय आएगा तो हम संपूर्ण बन जाएंगे, नहीं, मैं संपूर्णता का आह्वान करूंगा, मुझे संपूर्णता के समय का आह्वान करना, उसको अपने नजदीक लाना। और फिर बाबा ने कहा अगर समय ने आपको संपूर्ण बनाया तो प्रारब्ध समय को मिलेगी, आपकी प्रारब्ध घट जाएगी। समय आपका शिक्षक बना, प्रकृति आपकी शिक्षक बनी, कोई मनुष्य आत्मा आपकी शिक्षक बनी, तो वो अपना हिस्सा ले जाएगी शिक्षक बनने का। लेकिन अगर सर्वशक्तिमान आपका शिक्षक है तो सर्वशक्तिमान को हिस्सा नहीं चाहिए। अगर आप डायरेक्ट उसकी शिक्षाओं से अपना परिवर्तन कर रही हैं, तो शिव बाबा उसमें हिस्सा नहीं लेगा। लेकिन शिव बाबा को छोड़ करके आप किसी और की प्रेरणा से या मजबूरी से या परिस्थिति से बदलते हैं तो फिर आपका नंबर टू हो जाएगा। मुझे घटना याद आ रही है, एक बार जब सुनामी आई थी श्रीलंका की तरफ, तमिलनाडु की तरफ, आप में कई भाई बहन बैठे होंगे उस एरिया के, उनको याद होगा। तो उस एरिया के किसी सेंटर पर एक हेल्थ फेयर लगा हुआ था और बहुत पब्लिक हेल्थ फेयर देखने आ रही थी, बहुत साहित्य बिक रहा था। तो एक भाई था जो हेल्थ फेयर देखने गया था और उसने साहित्य के स्टॉल से कुछ किताबें उठाई, फिर उसने देखा कि भीड़ बहुत है, सेल करने वाला एक ही होगा, खरीदने वाले बहुत होंगे। उसने सोचा अगर मैं चुपचाप किताबें लेके चला जाऊं तो किसी को पता तो पड़ेगा नहीं। तो किताब लेके और वो आ गया। उसकी जो शॉप थी वो समुद्र के किनारे पे, समुद्र के किनारे कई तरह की शॉप्स होती हैं, कोई नारियल बेचता है, कोई कुछ करता है, तो उसकी भी शॉप थी। और सुबह सुबह 6 बजे सुनामी आई थी। जो लोग समुद्र के किनारे घूमने आते हैं वो भी सुबह सुबह आते हैं, तो वो भी सुबह सुबह दुकान खोल के बैठा था। और बाबा की जीवन कहानी पढ़ रहा था। अचानक बिना वार्निंग के समुद्र की झाल आई थी और वो कुर्सी पर बैठा था और वो झाल इतनी तेज थी उसे कुर्सी समेत समुद्र में ले गई। और बाबा की किताब उसके हाथ में थी। एक लहर आई, कुर्सी समेत उसको ले गई, कुर्सी तो समुद्र में गिर गई और दूसरी लहर उसको वापस बाहर फेंक गई और वो किताब अभी भी उसके हाथ में ही थी। तो उसके मन में आया कि ये जो किताब पे बाबा है ना, इस बाबा ने मेरी रक्षा की है। फिर उसको दूसरा ख्याल ये आया, पर मैं ये किताब तो बिना पेमेंट के ही लेके आया था, बाबा ने रक्षा तो की, लेकिन मुझे एक दृश्य इसलिए दिखाया कि मैं ईमानदार नहीं हूं, मुझे ईमानदार बनना चाहिए, मैं अभी इस किताब की पेमेंट करके आता हूं। तो वो मेला तो पूरा हो गया था, लेकिन उसे मालूम था कि सेंटर की तरफ से ये मेला लगा है। वो उस सेंटर पे गया, वो तो नया था। बहन जी ने पूछा, आप कौन है, कहाँ से आए, किस लिए आए? तो उसने बताया कि मैं 2-3 ऐसी ऐसी किताबें लेके गया था और पेमेंट करना भूल गया था। तो बहन जी आप ये कुछ पैसे रख लीजिए। बहन जी ने कहा, मुझे क्या पता कितने पैसे हैं। तो उसने कहा कि मैं किताबों से ज्यादा ही पैसे दे रहा हूँ आपको, आप इन्हें रख लो, जो बचे उन्हें आप अपनी गोलक में डाल देना और बाकी आप अपने साहित्य का मूल्य रख लो। तो ऐसे बहन जी को कह करके और वो आ गया। उसके मन को थोड़ी तसल्ली मिली कि मैंने जो गलती की थी मैंने उसको सुधार लिया। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल है। सवाल ये है कि उसमें जो सुधार हुआ, उस सुधार के पीछे शिक्षक कौन है? उसमें जो परिवर्तन हुआ, उस परिवर्तन के निमित्त कौन बना? कौन बना? कौन बना? परिवर्तन के निमित्त बनी प्रकृति। प्रकृति ने एक ऐसा दृश्य दिखाया, प्रकृति ने एक ऐसा वातावरण क्रिएट किया, प्रकृति ने ऐसा हमला किया और उसको लगा मेरी तो जान भी जा सकती थी, तो वैराग्य आया। और जब वैराग्य आता है तो व्यक्ति अपनी गलती भी मानता है और अपना परिवर्तन भी करता है। प्रकृति ने उसे थोड़ा डराया भी, जिसके कारण उसका परिवर्तन हुआ। तो ये नंबर किसको मिलेंगे? इस परिवर्तन में प्रकृति हो गई नंबर 1 और वो व्यक्ति हो गया नंबर 2। अगर उसमें ऑलरेडी सच्चाई होती तो जिस समय उसने चीज ली थी थोड़ा वेट कर लेता, लेकिन ये सोचता कि नहीं नहीं मैं ऐसी चीज ले ही नहीं सकता। अगर उसकी अपनी अंतर आत्मा ईमानदारी पे दृढ़ होती तो। लेकिन वो तो भूल ही गया, अच्छा है मुझे फ्री में मिल गई और पढ़ रहा है। अब प्रकृति ने उसको जागृत किया। तो किसी को प्रकृति जागृत करेगी, किसी को समय जागृत करेगा, किसी को कोई व्यक्ति जागृत करेगा, तो नंबर वो ले जाएंगे। और अगर व्यक्ति शिव बाबा की शिक्षा से जागृत होगा, बाबा ने कहा विदेही बनना है, बच्चे ब्रह्मा बाबा कैसे विदेही बने, हर पल चलते फिरते उठते बैठते बाबा ने कैसे देह से न्यारे होने का अभ्यास किया, आपको भी करना है। अगर हम बाबा की मुरली के इस पॉइंट को लेकर के अपना पुरुषार्थ बहुत काल का बना के रखते हैं, तो उस बहुत काल के पुरुषार्थ का बल हमारे में जमा होगा, उसका फल भी हमें मिलेगा। और अचानक कोई घटना घटी, अचानक बीमारी आई, शरीर में दर्द बहुत है और उस दर्द को सहन करने के लिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, ऐसे रीरी हो जाऊं ताकि दर्द ना हो, या और कोई ऐसी परिस्थिति आई और मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, विदेह बन जाऊं, देह को भूल जाऊं, तो इसमें मेहनत भी बहुत लगती है और इसमें हम नंबर 2 हो जाते हैं और वो परिस्थिति हमारे नंबर ले जाती है। इसलिए बहुत काल को अंडरलाइन कीजिए। बहुत काल का अभ्यास हो जाएगा, कर लेंगे, ये अलबेलापन। अभी से इसी घड़ी से मुझे तीव्र पुरुषार्थी बनना है, उड़ती कला का फरिश्ता बनना है। उड़ती कला तभी होगी जब विदेही बनने का अभ्यास होगा, और नहीं तो देह भान में तो हम घड़ी घड़ी अटक जाएंगे। ओम शांति। अभी हम सभी विदेही अवस्था का और बाबा से शक्ति लेने का अभ्यास करूंगी।